भक्तजन, आज 15 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए मंगलमय कल्याणकारी हो और आपको भगवत कृपा व गुरु कृपा प्राप्त हो। इससे पूर्व कि मैं श्री महाराज जी का कोई प्रसंग सुनाऊं, आपको प्रभु कृपा और गुरु कृपा हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि श्री महाराज जी का कथन है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए प्रभु कृपा तथा गुरु कृपा अति अति आवश्यक है। प्रभु कृपा, भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा क्या कैसे प्राप्त हो? प्रथम तो हमारे सामने ये एक सब्जेक्ट है, विषय है भगवत कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। इसके लिए प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम तो उस अनादि तथा सर्वव्यापक प्रभु के अस्तित्व के विषय में विश्वास करना होगा। एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जिसकी इच्छा से ही यूनिवर्सल सार्वभौमिक संसारिक सभी कार्य होते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा बिना, भगवान की इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर पत्ता भी हिलता है वृक्ष का, तो वो भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा ना हो तो हवा भी नहीं चलती, वायु भी नहीं चलती, वृक्ष के पत्ते खड़े के खड़े रह जाते हैं, शाखाएं भी नहीं झुकती। तो प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव योनि के साथ साथ पशु योनि भी है, पक्षी योनि भी है, जीव पतंग भी है, उद्भव भी है, जुए आदि भी है, मतलब बहुत से कीटाणु है। लेकिन इनमें कृपा किसको प्राप्त होगी? मानव को ही। मानव भी एक ऐसी योनि है, ऐसा जन्म है जिसमें मानव प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, योगियों ने तथा भक्तों ने, मैं तो ये कहूंगी कि प्रभु कृपा का सबसे बड़ा आधार भक्ति है। योग अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह, निष्काम सेवा अपनी जगह और भक्ति अपनी जगह। भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे प्रभु की कृपा मनुष्य को आसानी से प्राप्त हो जाती है। भक्ति भक्ति सभी कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति से भगवान शीघ्र ही द्रवित हो जाते हैं। तो भक्ति कैसे की जाए, भक्ति क्या है, अब इस पे भी हमको विचार करना होगा। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। संतों ने कहा है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक जो विधिवत की जाए और एक जो प्रेम से की जाए। विधिवत भक्ति में भगवान का या आराध्य देव का मूर्ति होगी, चाहे वो पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, पत्थर की हो, और भक्त उस मूर्ति के प्रति इष्ट भाव रखता हो, उसको नहलाता हो, कपड़े पहनाता हो, चंदन लगाता हो, फिर भोग लगाता हो, उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाता हो, पहनाता हो, एक प्रकार की पोशाकें तैयार करके, यहाँ तक कि कुछ भक्त लोग तो अपने इष्ट देव को अपने बिस्तर में भी सुला लेते हैं, उन्हें भगवान इतने अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ये हो गई वैदिक भक्ति, विधिवत भक्ति। ये विधिवत भक्ति हमारे जीवन में प्रथम श्रेणी की भक्ति है। जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो उसे आ ई सिखाया जाता है, कई बार ये आ ई पट्टी पे लिखाया जाता है, कई बार स्लेट पर, कई बार रेत पर भी हम लिखते हैं या लिखाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर बढ़ता जाता है, तो पढ़ाई के साधन भी बदलते जाते हैं। ठीक ऐसे ही विधिवत भक्ति प्रथम स्तर की भक्ति है। भक्ति इसमें अपने सभी कार्य ऐसे करता है जिससे कि वो भगवान के निकट पहुंच जाए। अगर सचमुच ही मनुष्य के मन में, भक्त के मन में ये भावना हो कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं, ये मेरे भगवान है, जैसे धन्ना जाट वो भी कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने मूर्ति में भगवान के दर्शन किए। और आज की युग में हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी ने पत्थर की मूर्ति में चिन्मयी माँ के, काली माँ के दर्शन किए। काली माँ उनसे बात करती है और उनको रास्ता दिखाती है, बताती है वो भक्ताने वाला है, ऐसा है वैसा है। तो विधिवत भक्ति में भी भक्त भगवान से एक ऐसा संबंध जोड़ लेता है जो संबंध आगे जा करके बहुत पक्का हो जाता है, जो कभी टूटता ही नहीं, फिर वो जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है, या फिर वो मुक्ति का मार्ग भी बन जाता है। तो इस विधिवत भक्ति के साथ साथ जब हम अगर तो ये भक्ति इतनी रह जाए कि हाँ आज सो उठकर नहाना है और फिर भगवान को नहलाना है, फटाफट नहलाए, फटाफट कपड़े पहनाए, है ना, और उनको अपने स्थान पर रख दिया और फिर गपशप में बैठ गए, फिर इधर की बात, फिर उधर की बात, फिर निंदा, फिर चूली, है ना, फिर पैसे की बात, ये वो यहाँ जो व्यापारी लोग है वो एक दूसरे को ठगने की बातें करते हैं, इधर उधर का जंजाल चलता रहता है। तो वो भक्ति वहीं तक सीमित रह जाती है, उस पत्थर की मूर्ति तक या मंदिर तक। लेकिन जब ये विधिवत भक्ति में मनुष्य भक्त अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से प्रेम करने लगता है, तो ये भक्ति आगे जाकर अनुरागात्मक भक्ति में बदल जाती है। अनुरागात्मक भक्ति का अर्थ हमें समझना चाहिए। अनुराग मतलब होता है दिल से प्यार करना, अपने दिल की सबसे गहरी सतह जो है उससे प्रभु को अपने जीवन का आधार मान लेना। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हमें सदा सदा उसका ध्यान आए, उसी इष्ट देव का, उसी भगवान का जो सबका नियंता है, तो वो अनुरागात्मक भक्ति कहलाती है। अनुरागात्मक भक्ति मिलने के पश्चात मनुष्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेता है। तो ये अनुरागात्मक भक्ति के लिए अब क्या साधन अपनाए कि हमें प्रभु की कृपा मिल जाए, उसके लिए मंत्र जाप। वैसे तो बहुत से और भी कई रास्ते हैं, लेकिन मैं आज की बात कहती हूँ कलयुग में हमें क्या करना चाहिए, मंत्र जाप। मंत्र भी बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े श्लोक अगर ना भी आए तो सबसे बढ़िया है ओम। ओम प्रणव है, तस्य वाचिका प्रणव। अगर भगवान को किसी ने देखना है, भगवान की डेफिनेशन किसी को देनी है, भगवान की परिभाषा किसी को देनी है, तो हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। और दूसरा है राम, ओम और राम दोनों तस्य वाचिका है, दोनों भगवान की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं, उनका दर्शन भी करवा देते हैं। इसलिए और कली काल में तो राम नाम, भगवान का नाम ही एक आधार है। कली केवल नाम आधार, सुमय सुमय हो जाए पारा। कलयुग में अगर हम दिल से प्यार से भगवान के नाम का जाप करें, तो ना ही हमें कोई कठिनाई आएगी, ना ही कोई दोष लगेगा, बल्कि राम नाम जपते 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 जब हम राम में लय हो जाएंगे, और राम नाम जब से ही हमें समाधि लग जाएगी, और हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, और भगवान के कृपा पात्र बनकर उनके साथ वैकुंठ धाम में निवास करेंगे, हमें मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा विषय है हमारा गुरु कृपा। प्रभु कृपा के विषय में मैंने कुछ चंद शब्द आपको बताए, अब मैं दूसरे टॉपिक पे आती हूँ कि गुरु की कृपा क्या होती है और कैसे प्राप्त होती है। अब पहले तो हमें गुरु की परिभाषा जान लेनी चाहिए, गुरु कैसे कौन होता है। गुरु जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, छोटे उद्देश्य से बड़े उद्देश्य की ओर ले जाए, जो हमें जीवन का रहस्य बताए, जो हमें ये बताए कि जीवन का असली उद्देश्य असली मर्म क्या है, वो ये हमें बताए कि भगवान की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, वो गुरु कहलाने के योग्य है। और उसका अपना जीवन भी सचमुच ही भक्ति में हो और शास्त्रों के अनुसार वो जीवन जीता हो, जिसके जीवन में सत्य अहिंसा यम नियम ब्रह्मचर्य अस्तेय परिग्रह शोच संतोष तप ईश्वर के प्रति शरणागति हो, वही गुरु क्या ला सकता है, उसी गुरु के पास हमको जाना चाहिए। तो ऐसा गुरु जब किसी को प्राप्त हो जाए तो डेफिनेटली उसे भगवत कृपा के साथ साथ गुरु कृपा भी प्राप्त हो जाती है। गुरु कृपा प्रभु कृपा की माध्यम बन जाती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंदियो मिलाए। तो गुरु की कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की भांति ही शुद्ध जीवन, नियंत्रित जीवन, प्रेम में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन बातों को हमें केवल बात नहीं समझना है, पाठ नहीं समझना है, इसको जीवन में सोलाने उतारना है, इसके विषय में हमको सोच विचार करना है। और आज से ही प्रभु कृपा तथा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, वो अवश्य अपनाकर अपना उद्धार। गीता में भी कहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा का उद्धार अपने आप करता है, कोई दूसरा, यहाँ तक कि भगवान या गुरु भी किसी मनुष्य के जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में इतनी शक्ति निहित है जितनी भगवान में है। क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान ने गीता में कहा है ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, प्रत्येक जीव मेरा सनातन अंश है। लेकिन वो सनातन अंश कैसा है, एक चिंगारी की भांति है, आग है, आग की चिंगारियां उड़कर इधर उधर जाती हैं। लेकिन एक चिंगारी भी अगर सूखे घास पे पड़ जाए तो घास जल उठता है। ऐसे ही अगर प्रभु की कृपा या गुरु की कृपा की एक चिंगारी भी हमारे भीतर आ जाए तो हमारी सोई ही आत्मा, हमारा सोया हुआ विवेक जागृत हो सकता है और हम पूर्ण ऋषा या नर से नारायण बन सकते हैं। अब मैं आपको श्री महादेवी तीर्थ की ओर ले जाती हूँ और श्री महाराज जी के जीवन का एक और प्रसंग सुनाने के लिए प्रतिशील हूँ। जनवरी 1987, प्रथम जनवरी 1987 नए साल का पहला दिन प्रातः काल ही एक भक्त ज्योति हलवाई आया है। कुछ देर पश्चात राम शीतल जी भी अपने पुत्र त्रिभुवन को लेकर नए वर्ष की शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं प्रतिवर्ष ही मिठाई का डब्बा लेकर चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, चाहे बर्फ बारी हो रही हो, वो भी शीतल जी का एक नियम है कि वो अवश्य मंदिर आते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि प्रथम जनवरी को शीतल जी मंदिर जाते हैं और तत्पश्चात मेरे पास भी आते हैं। कमजोरी तथा सर्दी अधिक होने के कारण श्री महाराज जी कुटिया में ही अपने बिस्तर पर बैठे हैं। अंगीठी जल ही है परंतु अधिक देर तक लगातार बैठने से श्री महाराज की तबीयत बिगड़ गई। सबका मन दुखी हो गया। धीरे धीरे तबीयत सुधरी और उन्हें नींद आ गई। 2 जनवरी दोपहर के समय श्री महाराज जी धूप में बैठे हैं और देख रहे हैं कि डिस्पेंसरी के सामने मरीजों की भीड़ लगी है और डॉक्टर इलाज कर रहा है। श्री महाराज विचार मगन है, उनका स्वप्न साकार हो गया है। 6 जनवरी को दिल्ली से आए भक्त श्री महाराज जी के पास कुटिया में बैठे हैं और बातचीत हो रही है। श्री महाराज जी उनके अतिथि के लिए व्याकुल हैं और बार बार कह रहे हैं मम्मी जी ये लाओ वो लाओ। उनका मन है कि मैं भक्तों को बहुत कुछ खिलाएं। श्री महाराज जी के आज्ञा अनुसार जितना बन सकता है अतिथि उतना मैं करने का प्रयत्न करती रहती थी। 14 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। पाठ हवन कन्या पूजन करके व्यास नदी के बीचों बीच स्थित शिवासन बड़ी चट्टान पर प्रतिवर्ष ध्वजारोहण होता है। श्री महाराज जी धूप में बैठे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं। शायद आपको पहले मैंने बताया है कि सन 1976 में भारी वर्षा के कारण शिव गुफा के ऊपर एक भारी भरकम चट्टान गिरने वाली हो गई थी और महाराज जी बार बार मुझे कहते थे मम्मी जी घर चले जाओ, अभी अभी आपको आए 1 साल 2 वर्ष भी नहीं हुए और ये चट्टान गिरने से मंदिर टूट जाएगा, आपकी कुटिया पर ये चट्टान गिर जाएगी तो बाबा लोगों को क्या जवाब देगा। वही चट्टान फिर कुछ दिनों बाद दिन के समय मेरे सामने तथा बाबा जी भी बाहर बैठे हुए थे छलांगे लगाते हुए कैसे सड़क पर आ गई थी और फिर सड़क में गड्ढा खोद करके नदी में जा बैठी थी, उसी को श्री महाराज जी ने क्या नाम दी है शिवासन। तो तत्पश्चात 1977 से 14 जनवरी को उस चट्टान पर झंडा चढ़ाया जाता है प्रतिवर्ष। तुलसी महाराज जी धूप में बैठे हैं और दृश्य देख रहे हैं कि भक्तों ने आज 9 बजे से 11 बजे तक ध्वजा आवाहन कर दिए, कितना प्रयत्न किया, परंतु व्यास नदी पार करके शिव आश्रम पर चढ़ पाना कठिन हो गया था। काफी नदी का काफी बहाव था और डूंगी भी थी, चट्टान थोड़ी किनारे पर थी उसको, इसलिए जो भी भक्त कोशिश करता कि जाए तो उसे डर लगता कि कहीं पाँव ना फिसल जाए, नदी के बीचों बीच गिर न जाए। श्री महाराज ने तब भक्तों को एक विधि बताई कि किस प्रकार सीढ़ी को जोड़ा जाए। सीढ़ी को चट्टान से जोड़ने का तरीका महाराज जी ने अपने भक्तों को बताया और इस विधि से भक्त शिव आसन पर चढ़ने में सफल भी हो गए। तब श्री महाराज जी ने कहा, किसी भी कार्य में सफलता के लिए प्रभु कृपा तथा गुरु कृपा अति आवश्यक है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और 23 जनवरी को ही श्री महाराज जी का जन्म दिवस भी है। इसी से कुछ भक्तों के मन में विचार आया कि महाराज ही तो कहीं सुभाष चंद्र बोस होंगे हैं? एक दो भक्तों ने तो भोले बनकर श्री महाराज जी से पूछ लिया था कि स्वामी जी आप कहीं सुभाष चंद्र बोस ही तो नहीं। श्री महाराज जी ये सुनकर हंस पड़े थे और बोले, सुभाष तो बहुत बड़ा योगी था। खैर 23 जनवरी को कन्या पूजन तथा भंडारे का आयोजन भी किया गया जिस पर अंतरंग भक्त आए हैं। अखाड़ा विहार से एक भक्त महिला भी आई है, श्रीमती हंसा देवी, जिन्हें बुखार हो रहा है, उनके लिए धूप में बिस्तर लगाने को महाराज जी ने कहा तो मैंने उनके लिए एक बिछौना धूप में लगा दिया, फिर उस महिला को भक्त को बिछौने पर सुला दिया। श्री महाराज उसके पास बैठ गए और उसे दबाने लगे। एक लगभग एक घंटे बाद महिला उठ बैठी और बोली, मेरा ज्वर उतर गया है, मैं ठीक हो गई हूँ। श्री महाराज जी ने थाली में भोजन मंगवाया और उसे खिलाया, फिर कहा, माँ आप धूप रहते घर चले जाओ अन्यथा सर्दी लग जाएगी। भक्त महिला प्रणाम करके चली गई। श्री राजन आचार्य नारियल की चटनी पीस रहे थे और दूसरे भक्त अन्य कार्यों में लगे थे। सायंकाल इडली सांभर भोंडा बनाने के लिए श्री महाराज की इच्छा अनुसार मैं सोई घर में ही थी। लगभग 1 बजे श्री महाराज सोई घर में आ गए और मैं उनके पास बैठकर भोंडा बनाने में उनकी सहायता करने लगी। जब भोंडा बन गया तो महाराज जी ने कहा, मम्मी जी आप भक्तों को गर्म गर्म ही खिला दो। मैंने सब भक्तों को बुलाया और सब ने प्रसन्नचित होकर श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया प्रसाद ग्रहण किया। अंत में श्री महाराज जी ने भी एक कोर खा लिया और खाकर बिस्तर में लेट गए। मैंने कहा, महाराज जी 4 घंटे आप लगातार बैठे हुए और खाया क्या आपने, थोड़ा सा और खा लीजिए। तो उन्होंने कहा, माँ बस बाबा ने कोई अपने लिए थोड़ी बनाया था, बाबा का पेट तो पहले ही भर गया था। जो मनुष्य अपने लिए पकाता है, केवल अपने लिए ही पकाता है, वो पाप खाता है। उन्होंने हमें एक रास्ता बताया, ये उपदेश दिया, गाइडेंस दी कि जब भी कुछ नई चीज बनाओ, अच्छा सब बनाओ, तो केवल अपने लिए नहीं, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस या जो भी हमारे साथ रहते हैं नौकर चाकर, उनको पहले भर पेट खिलाओ, फिर स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लो। अंत में श्री महाराज जी ने थोड़ा सा खाया और खाकर बिस्तर में लेट गए। भक्त भी अपने अपने घरों को लौट गए। तबीयत ठीक न होने के कारण रात भर श्री महाराज जी को नींद नहीं आई। वो करवट बदलते हैं और मैंने देखा कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं दिन भर और रात को भी उनको नींद नहीं आई है। मैं जानती थी कि मेरे भगवान बड़े ही दयालु हैं। अवश्य ही उन्होंने कल उस महिला भक्त का दुख दर्द अपने शरीर पर ले लिया है। ये जानते हुए मैंने डॉक्टर हर्ष मेरा को जो उस दिन फ्री डिस्पेंसरी में सेवा करने आए थे बुला भेजा। वो जब वो आए तो मैं उनको श्री महाराज जी के पास ले गई। डॉक्टर ने नर्स देखकर कहा, ओह स्वामी जी आपको तो बुखार है, ये कैसे हो गया? आपको तो कभी बुखार होते नहीं देखा, कभी आपको बीमार नहीं देखा। तब मैंने डॉक्टर साहब को पिछले दिन की घटना सुना दी। उन्हें ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी दूसरों को दुख को इस प्रकार ले लेते हैं और फिर झेलते रहते हैं। डॉक्टर दवाई देकर चला गया तो मैंने महाराज जी से कहा, स्वामी जी आप क्यों ऐसा करते हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए तकलीफ ले लेते हैं। महाराज जी ने कहा, मम्मी जी ये बुखार अपना समय लेकर चला जाएगा, तुम चिंता मत करो। दवाई लिए बिना ही श्री महाराज जी का ज्वर तीसरे दिन उतर गया और मैं समझ गई कि एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा होता ही आया है कि महाराज जी दूसरों के दुख दर्द हाथ लगाकर ही अपने शरीर पर ले लेते हैं और फिर उस दुख दर्द को भोगने के लिए दो दो चार चार दिन बिना खाए पिए समाधि में ही रहते हैं। महाराज जी का कहना है कि जब बाबा किसी का दुख दूर करता है और अपने शरीर पर वो दुख आ जाता है तो बाबा इसी जन्म में उस दुख को भुगतने के लिए उस कर्म भोग का भुगतान कर देता है ताकि वो दूसरे जन्म भी साथ में ना चला जाए। प्रायः सभी भक्तों का अनुभव है कि श्री महाराज ने समय सबका दुख दूर किया है। वे कई बार अपना रक्त दान देने के लिए तैयार हो जाते थे। विष्णु मिस्त्री की पुत्री के लिए जब वे अपना खून देने के लिए तैयार हो गए तो उनके एक भक्त ने अपना रक्त दान कर उनकी इच्छा पूरी की थी। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने भक्तों को त्याग एवं सेवा की प्रेरणा देते थे। जब मैं माँ देवी तीर्थ में आई तो आरंभ के दिनों में किसी प्रकार की सुविधा ना होने से और आर्थिक अभाव होने से तथा दिन भर का काम काज करने से मुझे अधिक थकावट हो जाती थी और कभी कभी उससे मुझे अचानक सिर दर्द हो जाता, कभी सर्दियों में नाक में भारी दर्द हो जाती जिससे मुझे बड़ा ही दुख होता था, मैं कराह भी उठती थी। उसमें श्री महाराज जी हाथ के स्पर्श से ही मेरे दुख को दूर कर दिया करते थे। एक बार इसी प्रसंग में श्री महाराज जी ने मुझे बताया था, जब बाबा यहाँ अकेला ही था तो जब कभी बुखार या पेट दर्द होता तो बाबा अपना दुख दर्द अपनी लाठी को देकर सब कार्य करने के बाद फिर वही दुख लेकर सो जाता था। मतलब वो मुझे समझाते थे कि अगर जब आप बीमार हो जाओ तो डरना नहीं, उस दुख दर्द को एक किनारे रखकर अपना जो आपको टाइम टेबल मिला है दिन भर का उसको अवश्य पूरा करना है। एक बार मेरी रात को मेरी लात में बड़ी भारी दर्द हो गई। मैं रात भर छटपटाती रही, मेरे पास कोई नहीं था। तो महाराज जी की कुटिया कोई 20 पौड़िया नीचे उतर कर थी और मैं अपनी कुटिया से निकलकर प्रातः काल 4 बजे महाराज जी के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। उन दिनों मैं साड़ी पहनती थी तो सर्दी थी, सर्दियों के दिन थे और रात में बड़ी दर्द हो रही थी। तो मैं महाराज जी की कुटिया में जाकर के उनको कहा, स्वामी जी ने कहा इतनी सुबह क्यों आई हो? मैंने कहा रात में रात भर दर्द हुई, नींद भी नहीं आई, चला भी नहीं जा रहा है और मैं बाँध धोने के पास जाके बैठ गई। तो श्री महाराज जी ने कहा अब क्या किया जाए, क्या दवाई तो है नहीं कोई यहाँ पे मंदिर में। तो उन्होंने लाल टैन से मिट्टी का तेल निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहा इसे मल लो। आधा घंटे के बाद भी जब दर्द इतनी ठीक नहीं हुई तो उन्होंने धोने के भस्म निकाल के मेरे हाथ में दी और कहा माँ इसे मल लो। वो भी मल लिया, फिर मुझे कुछ नींद आ गई। लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर वही दर्द निकली तो फिर महाराज जी को ख्याल आया कि शायद हो सकता है हड्डी वगैरह कोई गल न गई हो। तो वो मुझे बिना बताए ही निवेली चले गए। निवेली कैंप में उनका एक कैंप भक्त रहता था जो वहाँ कंपाउंडर था ITBP कैंप में, और वहाँ उनको जाकर बोला कि आज माता जी को बहुत दर्द है लात में, तो क्या दवाई देंगे आप? तो बोला कोई नहीं, मेरी घरवाली आएगी वो उनको इंजेक्शन लगा देगी। तो फिर उन्होंने अपने घरवाली को जैसे शकुंतला कटोच उनकी घरवाली का नाम था, वो आई और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। तो बाबा जी कहते थे कि माँ क्या करना, कोशिश यही करना कि जो सुख दुख आए उसको बिना दवाई ही भोग लेना चाहिए। वे कहा करते थे प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता है, विधि का विधान टलता नहीं है, लेकिन जो दूसरों का दुख दर्द ले लेता है उसे इसी जन्म में उस भोग का विधान कर देना चाहिए अथवा उस विधि के विधान को टालना नहीं चाहिए, लेकिन उसको भोग लेना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उसे भुगताना पड़ता है। साथ ही वे कहते थे यदि ऐसा कोई दुख आ जाता है तो हमें महामंत्र का अखंड पाठ करना चाहिए। कई बार जब मुझे मेरे लात में दर्द होती या किसी भक्त को बहुत दुख आ जाता तो वो यही कहा करते जाओ अखंड पाठ करो, प्रभु कृपा से तुम्हारा दुख टल जाएगा। उस दिन के पश्चात मैंने भी प्रयत्न किया कि जब कभी मैं लात की दर्द से तंग होती तो मैं रात भर प्रभु नाम का जाप करती और प्रातः अपने काम में वैसे ही जुट जाती जैसे मानो मेरी टांग में दर्द ही नहीं था। तो ये है प्रभु कृपा और ये है भगवान की कृपा, ये है गुरु की कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी। गीता माँ।